वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो योग है वो एकाग्रता केवल नहीं है। संसार में जितने योग सिखाए जाते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन है, वो अपने विचारों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रकृति पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसी को योग कहा जाता है। जैसे विपाश्यना योग या बहुत सारे योग संसार में है, वहां देयर मेडिटेशन इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। हमारा जो योग है उसका आधार एकाग्रता नहीं है, रादर एकाग्रता परिणाम है किसी चीज का। तो योग में यदि एकाग्रता नहीं है, इसका अर्थ सबसे पहले तो किसी ना किसी श्रीमत की उल्लंघन हो रहा है और बाबा के प्रति प्यार की कमी। एक मां जो यहां है और उसका बेटा विदेश में है, वो कभी नहीं कहती कि अभी मैं अपने बेटे के ध्यान में बैठती हूं, अभी मुझे बेटे को याद करना है। क्यों क्यों? उसको तो याद आते रहता है, वो कभी भूलती नहीं, उसको इतना प्यार है उससे। इसका मतलब एकाग्रता कम है, इसका अर्थात हमारा बाबा से प्यार कम है। और बाप से प्यार बढ़ाने की विधि है 1, 2, 3। पहला अभी तो डिस्कस किया, पहला उसके उपकार। उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं, तो पहला उपकार, दूसरा उसकी महिमा और तीसरा मुरली से प्यार, यज्ञ से प्यार, परिवार से प्यार और मधुबन से प्यार बढ़ाना है। तो जितना प्यार बढ़ेगा एकाग्रता स्वतः आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति के सत्संगों में एवं मंदिरों में दर्शन है तो जाना चाहिए? नहीं, जाने की इच्छा नहीं होती लेकिन सेवा भाव से जाने की इच्छा होती है तो वहां पर कैसे सेवा करें?
जाना तो चाहिए। बाबा ने ही मुरलियों में कहा है तुम्हें शिव के मंदिर में जाना है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है, राधे कृष्ण के मंदिर में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां जो पुजारी है और वहां जो भक्त है वो सभी देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, क्योंकि वो देवताओं को मानते हैं। क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो 2500 साल के बाद उसी धर्म को हिंदू धर्म कहा गया है और हिंदू धर्म की जितनी आत्माएं हैं वो सभी देवी देवताओं के उपासक है, वो सभी भक्त है। और बाबा का संदेश हर आत्मा तक हमें पहुंचाना है। आज भी बोला है चित्र के बारे में, चित्रों की बहुत महिमा की है आज सुबह मुरलियों में। चित्र, सीढ़ी का चित्र, चक्र का चित्र, गोले का चित्र, ये सारे चित्र आपको समझाने हैं। तो वहां जाना है और वहां की जो आत्माएं हैं उनको बाप का संदेश देना है। दूसरा प्रश्न है कैसे, उसकी भी बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई है। जो जिसका भक्त है उसको उसी अनुसार सिखाना है। कृष्ण का भक्त है तो हम चालू ही वहां से करें, कृष्ण से, कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है। शिव का कोई भक्त है उसके लिए तो आसान है, शिव और शंकर में क्या भेद है, इस तरह से हम सेवाएं कर सकते हैं।
नेक्स्ट, राजयोग और ज्वालामुखी योग में क्या भिन्नता है? ज्वालामुखी योग
कोई नए प्रकार का योग नहीं है। राजयोग में ही ज्वालामुखी योग, एक आत्मा जो बीज रूप अवस्था में परमधाम में जो स्थित होती है, बीज रूप अवस्था, उसी को ज्वालामुखी योग सीड स्टेज कहा जाता है, जिसमें सूक्ष्म स्थूल शरीर तो है ही नहीं, वहां सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, केवल आत्मिक स्वरूप में आत्मा स्थित है और संकल्प भी वहां पर बहुत शांत हो गए, कम हो गए। वो जो अवस्था है परमधाम का जो योग है उसी को ज्वालामुखी योग कहा जाता है, उसी को बीज रूप स्थिति कहा जाता है, उसी को, और उसी एक स्टेज में विकर्म विनाश होते हैं। बाकी जितनी स्टेजेस है, बाबा से रूरियान करना, बाबा से बात करना, विश्व को सकाश देना, आत्माभिमानी स्थिति, इन चीजों से विकर्म विनाश नहीं होते। हाँ, वो सारी स्टेजेस है वहां तक पहुंचने की। अल्टीमेट जो फाइनल योग है वो है परमधाम का, तो एक ही है। ज्वालामुखी योग परम धाम में एक संकल्प में स्थित हो जाना, और एक का भी वो धीरे धीरे और कम होते जाता है। बिल्कुल जैसे कि ऐसी अवस्था आती है कि जिसमें थॉट्स बहुत कम है, ना के बराबर, वो ज्वालामुखी योग है। नहीं, धीरे धीरे संकल्प करके मैं परमधाम में हूं और वहां एक संकल्प में स्थित हो जाना, एक में टिक जाना, ज्वालामुखी योग।
नेक्स्ट है, इस जीवन में मेरे साथ कदम कदम पर विश्वासघात हुआ है तथा मुझे बहुत धोखा मिला है। मैंने जिनके साथ नेकी की और विश्वास किया उन्होंने मुझे धोखा दिया। हाँ, ब्रह्मा कुमारी जी में आने के बाद मैंने एहसास किया कि मेरे पिछले जन्मों का फल है। और मैंने उन्हें माफ भी कर दिया, परंतु ध्यान में बैठते वही सभी शक्लें मेरे सामने आ जाती हैं और मेरी एकाग्रता डिस्टर्ब हो जाती है। मैं आक्रोशित हूँ, संवेदनशील हो जाता हूँ तथा बेबस महसूस करता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?
माफ तो कर दिया पर पूरी तरह से माफ नहीं किया है, पूर्ण हृदय से अभी तक माफ नहीं किया है। दिल के किसी कोने में अभी तक सूक्ष्म बदले की भावना है, और यदि अवसर मिल जाए तो वो कर भी दे। तो बदला उस तरह का नहीं होगा जिस तरह संसार में लिया जाता है, अलग तरीके का होगा, संकल्प के द्वारा होगा। माफ करना अर्थात संपूर्ण माफी, बेशर्त माफी, अनकंडीशनल पार्डन। और वो एक दिन नहीं करना होता है, रोज सुबह अमृत वेले, जैसे कल भी हमने वहां पर प्रयोग किया था गोमती नगर में, कि जिन जिन आत्माओं ने हमें दुख दिया है, जिन जिन ने हमें सताया है, दुखाया है, पीड़ा पहुंचाई है, जिनके वजह से किसी जन्म में हमारी शायद मृत्यु भी हो गई, जिसने छल कपट और षड्यंत्र किए हैं हमारे विरोध में, इंसल्ट किए, गिलानी की है, अपमान किया है, हमारे विरोध में प्रचार किया है, प्रोपेगेंडा किया है, गलत गलत कंप्लेंट की है, दोषारोपण किया है, ये सब जिन आत्माओं ने हमारे साथ किया है, वास्तव में हमने भी किसी जन्म में उनके साथ ऐसा किया होगा। और अभी हमारा कर्तव्य है कि स्वयं को पूर्वज हूं इस समान में स्थित हो जाना। मैं पूर्वज हूं, मैं कल्प वृक्ष की जड़े हूं, मैं महान आत्मा हूं, और इन सभी आत्माओं को मैं माफ करता हूं। और रोज अमृत वेले, रोज एक दिन भी मिस ना हो, रोज अमृत वेले की जो अंतिम 5 मिनट है, 4:40 से लेके तो 4:45 तक, रोज उन आत्माओं को इमर्ज करना और उन सभी आत्माओं को दिल से माफ करना। केवल माफ नहीं करना, बाबा से प्यार की किरणें लेना और उनको प्रेम से इतना भर देना कि उनके प्रति अभी हमारे हृदय में इतना प्यार उत्पन्न हुआ है कि उन्होंने कुछ हमारे साथ गलत किया ये है ही नहीं, रादर हम अभी ये कह रहे हैं कि आप सभी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आप जीवन में आए, इसकी वजह से तो हिसाब किताब चुकतू हुआ, नहीं तो ये हिसाब चुकतू होता ही नहीं इसके लिए। और ये अभ्यास रोज 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 करना है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हमने उनको पूर्ण रीति से माफ कर दिया है और अभी उनके प्रति इतना सा 1% भी घृणा, द्वेष, ईर्ष्या हमारे हृदय में नहीं है। पर डेली करना पड़ेगा, 6 मास तक इसको डेली कीजिए।
जब राजयोग से हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, या जैसे सूरज भाई ने कई बार कहा है कि सब कॉन्शियस माइंड का यूज कर हम अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, तो हमारी वरिष्ठ दादियां या बहनें जिन्होंने 30-40 वर्ष या इससे भी ज्यादा राजयोग का अभ्यास किया, वो बीमार कैसे हो सकती हैं या बड़ी बड़ी बीमारियां तथा कैंसर से सफर करते हैं?
शरीर की बीमारियों से कोई भी छुटा नहीं है। सबसे पहले बात, हमारे जो 63 जन्म के हिसाब किताब है वो भिन्न भिन्न रूप से चुक्त होंगे, एक आत्माओं के द्वारा, दूसरी आत्माओं से हमारे हिसाब किताब, दूसरा शरीर की बीमारी के द्वारा, और तीसरा चुक्त जो होंगे वो होगा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। इसमें इस हिसाब किताब से कोई भी छूटा हो नहीं है। दूसरी बात, जो भी हमारी दादी आए, अभी दादी जानकी 80 साल की योगी है, दादी जानकी की योगी होने की आयु जो है वो 80 साल है, उम्र 100 साल की है, योगी होने की आयु 80 साल की है, 80 साल की योगी। बहुत सारी बीमारी है, सभी दादियों को लगभग थी, कुछ कुछ होंगे जिनको नहीं थी। ये जो महान आत्माएं हैं इस संसार की, इनके जो हिसाब किताब चुकतू होंगे, आप अगर देखेंगे तो दूसरी आत्माओं से जो हिसाब किताब चुकतू होते हैं बड़े कड़े होते हैं, उस तरह की इनके हिसाब किताब नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं वाले इनके हिसाब किताब अब तक नहीं है। जो इनके हिसाब किताब है शरीर की बीमारी के द्वारा, शरीर की बीमारी अगर ना हो तो कहीं और रीति से हिसाब किताब चुकतू हो। अभी क्योंकि ये महान योगी है और राजयोगी है, उनके हिसाब किताब है, उनको बीमारियां है, पर यदि वही बीमारी किसी और को होती तो उस आत्मा की अवस्था कैसी होती है आप सोच सकते हो। दादी को हमने ऐसी ऐसी कंडीशन में देखा है, बहुत जैसे बस अभी जाने वाली है, बस अभी शरीर छोड़ने ही वाली है, और उसमें से बाहर आ गए और दादी को कुछ खबर नहीं उसकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितनी बार ऐसा हुआ कितनी कितनी बार रात रात भर हम जागे बैठकर, परंतु ऐसे लगा बस जा रहे गए अभी। एक बार तो हॉस्पिटल से मुंबई से लेके आए कि नहीं हो रहा है कुछ, शरीर छोड़ना है तो मधुबन में ही छोड़ेंगे, यह संकल्प के साथ सभी ने मिलकर, सब बड़ों ने डिसाइड करके लेके आए। पर दादी दो दिन में ठीक हो गई आने के बाद। आश्चर्य है वो। तो इनके हिसाब किताब है, पर वो आत्मा उससे अप्रभावित है। कितनी दादियों को हमने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट एडमिट थे, इधर प्रिक कर रहे, इधर प्रिक कर रहे, इधर लाइन ले रहे, उनको कुछ भी नहीं, वो जो इंजेक्शन चुभ रहा है उसकी फीलिंग भी नहीं, इतनी अशरीरी अवस्था है। हिसाब किताब तो है, परंतु वो उस हिसाब किताब से प्रभाव से परे, उन पर उनका कोई असर नहीं है। तो ये तो जैसे ना के बराबर हो गया है, पर हिसाब किताब सबको रहेंगे, वो तो बात है।
जिनको घर से ऑफिस आने में 45 मिनट या एक घंटे लगता है, इस समय को योग साधना ज्ञान में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है जो सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक हो। इनका ही दूसरा क्वेश्चन है, ऑफिस में सहकर्मी जो बातें करते हैं या कोई डिस्कशन होता है उसमें बहुत सारी बातें व्यर्थ की होती हैं या गंदी भी होती हैं, उससे कैसे बचा जाए?
पहला जो है ट्रैवलिंग, कई लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कई लोग ड्राइवर ड्राइविंग खुद करते हैं, कोई लोग ड्राइविंग खुद नहीं करते, उसमें दो है, एक है ड्राइवर, एक है बाजू में बैठने वाला, पीछे बैठने वाला। कोई लोग टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, मुंबई में अगर जाओ वहां लोकल से ट्रैवल करते हैं, दो दो तीन तीन चार चार घंटे रोज का ट्रैवलिंग है, जाना चार घंटा, किसी का आना चार घंटा, ऐसे भी कई सारे भाई बहने हैं। ट्रैवलिंग का जो पीरियड है, अगर हम ड्राइविंग नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, उसमें भी फोर व्हीलर और टू व्हीलर, ये जो पीरियड है उसमें भी हम कहां ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रोड कैसा है, ट्रैफिक वाला है या कोई नहीं है उस रोड में, बहुत सारी पॉइंट्स इसमें आ सकती है। तो ये जो ट्रैवलिंग का पीरियड है,
वैसे ऑफिस से ही आने का है तो ट्रैफिक वाला ही होगा।
हाँ, तो ये जो पीरियड है इसको हमें सबसे पहला तो ये हमारा वेस्ट ना जाए, इसको भी हमें योग युक्त बनाना है। अगर हम ट्रैवलिंग ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो विधि है हम कहेंगे, क्योंकि चलती गाड़ी में पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो वो है क्लास सुनना, पीछे बैठे या आगे बैठे, एक तो क्लास, दूसरा कमेंट्री। यदि हो सके तो कोई कमेंट्री, योग की कमेंट्री, अच्छा। तीसरा आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, और जितने अगर ये दोनों भी नहीं कर रहे पहले टू ऑप्शंस, आत्मिक स्वरूप में स्थित होके रास्ते पर चलने वाले पीछे बैठकर जितने लोग हैं, हम ड्राइविंग नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, हम जितने लोग हैं उनको केवल आत्मा देखने का अभ्यास करते रहे, और हरेक के प्रति संकल्प करे कि ये भी बाबा का बन जाए, इसको भी बाबा की का ज्ञान मिल गया, या ये संकल्प करे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मुझसे शक्तियों की किरणें इन आत्माओं को जा रही है, एक एक आत्मा जो दिख रही है उसको शक्तियों की किरणें जा रही है, इसको बाप का परिचय मिल रहा है, या ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा भी ड्राइवर हूं और ये शरीर एक गाड़ी है और ये गाड़ी को लेकर मैं आत्मा ड्राइवर ले जा रहा हूं ऑफिस। और फिर ये भी सोच सकते हैं कि मैं फरिश्ता हूं, इस कार में बैठा हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें निकल रही है, कार में फैल रही है, कार से निकलकर वो सारी किरणें जितने सड़क पर लोग चल रहे हैं उन सबको तक फैल रही है, और सभी के हृदय में जैसे प्रकंपन आ रहे हैं पवित्रता के, और सबको लग रहा है कि कोई तो आकर्षण हो रहा है उनको, सबके मन में संकल्प उत्पन्न हो रहा है, ईश्वर कौन है, भगवान क्या है, जो नास्तिक है वो आस्तिक बनने की तैयारी में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं जब हम ड्राइविंग नहीं कर रहे। अभी कई लोग जो होते हैं ड्राइवर होते हैं, एक ड्राइवर हमारे पास उधर कई सारे लोग हैं इस तरह के ड्राइविंग करने वाले, तो हमने देखा है जो वास्तव में इसमें सबसे पहले तो संकल्प चाहिए कि हमें ये समय को सफल करना है। अगर वो संकल्प ही नहीं है, बस ऐसे ही निकल गए, तो फिर तो कुछ नहीं, और उसके लिए बाकी हमारा सारा समय बहुत अच्छा जा रहा हो, सुबह का शाम का, ताकि हम उसको भी योग युक्त बनाए। अब जो ड्राइविंग कर रहा है उसके लिए कभी कभी कुछ सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, उसकी वजह से ट्रैफिक मतलब वो सुनाई नहीं देगा फिर बाकी की गाड़ियां हॉर्न वगैरह, तो उसके लिए वही अभ्यास है कि जो भी देख रहा है खाली आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, सबको बार बार आत्मा देखते रहना, गीत सुने, कोई क्लास सुने, अगर हो सके तो वो भी, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है और उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो वो कर सकता है, परंतु और उसमें रेडियो सुनना ये सब चीजें नहीं करनी है। व्यर्थ की बातें करते रहना, जैसे हम बैठे और हमारे बाजू में कोई बैठा है और हम बहुत बातें करते रहे, बहुत इधर उधर की संसार की फालतू बातें, तो समय वेस्ट ही गया। अगर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, अगर दो लोग बैठे हैं पीछे और वो ज्ञान की चर्चा करे तो बहुत अच्छा। मामुरली में क्या था ये। अभी दूसरा पॉइंट है ऑफिस का वातावरण। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अगर तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हूं इस समान में स्थित होते हो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ये साक्षात अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। मैं ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य हूं इस समान में जब तुम स्थित होते हो तो वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। यदि हम ऐसे ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम कर सकते करते ऐसे महकमा डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहां सभी विकारी है, सभी निंदा करने वाले हैं, ग्लानी करने वाले हैं, हंसने वाले हैं, कहने वाले ये आ गए महात्मा, ये आ गए गुरुजी, ये आ गए ओम शांति वाले, ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले, ये आ गए, इस तरह से कमेंट करने वाले कई सारे लोग होते हैं संसार में। इस तरह से कमेंट करने वाले के लिए सबसे पहली विधि है उनके बारे में शुभ भावना रखना, उनसे हंसी मजाक नहीं करना, जितना हो सके सीरियस रहना, गंभीर रहना और उनके प्रति शुभ भावनाएं रखना, और उनको रोज अमृत वेले इमर्ज करना और प्यूरिटी की सकाश देना, रोज एक दिन भी मिस ना हो। परंतु उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं, उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं, उनके लिए कोई अपशब्द नहीं, उनके लिए कंटिन्यूअस शुभ भावना। शुभ कामनाओं में सबसे बड़ा बल है इस संसार में। कैसी भी आत्मा हो, पत्थर पानी हो सकता है, इतनी शक्ति शुभ भावनाओं में, चाहे कितना भी विरोधी हो। बाबा को मारने के लिए लोग आते थे, जान से मारने के लिए, क्या कुछ नहीं किया, कितने षड्यंत्र किए, अखबारों में डाला, सब कुछ किया, पर बाबा ने, लोग कहते थे बाबा को कि बाबा इनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करो। बाबा ने कहा कि वो तो बच्चे हैं, वो परवश है, अज्ञानी है, उनका कोई दोष ही नहीं है। वो भी अज्ञानी है, संपूर्ण अज्ञान निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है, शुभ भावना है।
भक्ति में भावना अच्छी रहती है सभी पदार्थों वस्तुओं जीवों के प्रति, परंतु अभी तो केवल अपना ही नशा है, भावना गायब ही हो गई है, गायब सी हो गई है, भावनाएं फिर से जागे, इसके लिए क्या करना
चाहिए? क्या भावनाएं?
भावनाएं,
हाँ हाँ, फिर से जागे।
ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, इतनी भावना हाँ। रहती है ना।
देखो भक्ति में बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, बहुत ज्यादा भावनाओं का अतिरेक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पाया नहीं है। यहाँ सबके पेट भरे हुए है, पा लिया, मिल गया, उसके बाद में एकदम ढीले हो जाते। वहां क्या पाना है, पाना है, अभी साधना करनी है, ये करना है, वो करना है, और सत्य क्या है, सत्यान्वेषण है वहां पर, सत्य की खोज, सत्य का अन्वेषण। ये रियलाइजेशन की अभी तक बहुत कुछ हमने नहीं पाया है, और यहां आते ही पा लिया। परंतु ये पा लिया को गलत अर्थों में नहीं लेना। ये पा लिया मतलब ये नहीं कि सारा ज्ञान समझ में आ गया है, जो समझा है सूचना है। ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, बहुत फिलोसॉफिकल है, बहुत तीव्र है, गूढ़ है, इतना जल्दी वो समझ में नहीं आता है, उतनी उसकी गुह्यता में हम गए कहां। आज जैसे हमने एक चर्चा की बोल कैसे होने चाहिए, ये तो बस एक हमने चर्चा की थोड़ी सी, अगर कोई चाहे तो इसकी और गहराई में जा सकता है। एक एक शब्द जो यहां 50 शब्दों में से एक एक शब्द की गहराई में जा सकते हैं, एक एक शब्द पर एक एक पेज का चिंतन लिखा जा सकता है, और इतनी उसकी गुह्यता में जा सकते हैं। ये इच्छा उत्पन्न हो कि मुझे जानना है, मुझे जानना है, पहले तो ये ज्ञान के लिए, फिर है भावना भगवान के प्रति प्यार, वो हमने देखा कि कैसे प्यार को बढ़ाए। ये कुछ ही बातें देखी, इस पर तो बहुत सारा एडिशन किया जा सकता है कि ये करो वो करो तो प्यार बढ़े, और हम भक्ति मार्ग के जो भक्त है उनसे भी थोड़ा सीखे। कौन थे वो वक्त? हम ही तो थे। भक्ति में इतनी तीव्रता अभी तीव्रता है ही नहीं, क्यों? अपने आप से पूछे, अरे जिसके लिए हमने इतना कुछ किया और अभी वो मिला और अभी कुछ भी नहीं कर रहे, कैसी कैसी बात है ये। तो हम अपने अंदर वो तीव्रता लाए, थोड़ा सा भावनाएं हमारे अंदर बहुत हो। ज्ञान में आने के बाद भावनाओं को नष्ट नहीं करना है।
कई बार भाई सब हम जाएंगे तो हमको उधर नहीं परमिशन मिलेगा, लेकिन हम लेटर लिख के यहाँ से देते हैं तो परमिशन मिल जाता है। ऐसे कहीं हम जाएंगे तो नहीं मानेगा कोई गवर्नमेंट में ऑफिस में, लेकिन वो कोई प्रूफ ले जाएगा हमारा ही तो वो मान लेगा। ऐसे ही शायद यहाँ भी होगा।
कैसे कैसे कहाँ?
जैसे मान लो हम लेटर लिख के कई बार देते हैं तो उसको जो है वो
कहाँ जाने के लिए लेटर लिख देते हैं?
मधुबन में किसी
मधुबन में जाने के लिए। अच्छा,
तो वो जाके उनको अच्छा से एकोमोडेशन मिल जाएगा, लेकिन हाँ। अगर हम जाएंगे कई बार तो नहीं मिलेगा
बिना लेटर के। पूछ रहे हैं कि अगर बिना लेटर के जाते हैं तो?
हम जाएंगे, हम खुद।
हम मतलब कौन?
हम माना हम
हाँ। मैं। देखो सबसे पहले हमने जो तीसरा जो पहुंचाव था जो पॉइंट कहा था मधुबन,
नहीं दूसरा इसमें जैसे कि अगर हम जाएंगे हम कहेंगे हम ही ये हैं ये काम कर दो तो नहीं जाएंगे, बाकी अगर हमारा ही ये आईडी कोई होगा लाइसेंस होगा ये तो कर देगा। था कि जैसे भगवान को ये था ना कि भावनाएं पैदा करना और ये वस्तु को भगवान माना उसमें कि हम ढूंढ रहे हैं और वो मिल गया तो हम अब वो भावना नहीं है, मिल गया तो वो भावना नहीं है, लेकिन उसकी फोटो से भावना।
समझा कहाँ? पूरा समझा है, पूरा जाना है, उसमें उसने जो कुछ कहा है उसको समझना, अर्थात उसने जो कुछ कहा है उसको समझना। 69 से लेकर तो 2016 तक जितनी मुरलियां है इतना उसने कहा है, उसको जानना अर्थात ये सब जानना जो उसने कहा है। क्या वो उसको जाना है, उसको समझा है? कोई व्यक्ति कह सकता है हमने भगवान को जाना है, अन्यथा वो केवल एक नशा मात्र है जो कि ज्ञान में आने के इनिशियल पीरियड में जो रहता है वो कुछ समय रहेगा, बाद में तो खत्म हो जाएगा।
कई बार भक्ति की कई किताबें पढ़ने का मन करता है अभी भी, दुर्गा सप्तशती रामायण गीता भागवत ये सभी तो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए?
वो डिपेंड करता है किसका कितनी ग्रास्पिंग पावर है, कितना वो समझ सकता है, कितना उसकी बुद्धि एकाग्रता है, कितनी स्मरण शक्ति है और कितना वो सारी चीजों को ज्ञान से जोड़ता है। अगर वो ज्ञान से नहीं जोड़े और इधर उधर भटक जाए तो हम कहेंगे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बाबा खुद ही कहते हैं हियर नो ईविल सी नो ईविल, ये शास्त्रों के लिए कहते हैं बाबा, जो ये मुरली है बस उसको ही पढ़ो और उसके ही गहराई में जाओ। कई लोग ये छोड़कर जहां पर भी गए हैं और दिशाहीन हो गए, भटक गए। इसके लिए ये व्यक्ति को देखकर कहा जाएगा कैसा है वो उसके आधार।
ड्रामा वो रिपीट होता है या पुरुषार से बदलता है?
कल रात में इसकी चर्चा चल रही थी, ड्रामा और पुरुषार्थ, ये झगड़ा तो भक्ति काल से चालू है। उधर भाग्य और पुरुषार्थ कहते थे, ज्ञान में आने के बाद आप कहते हैं ड्रामा और पुरुषार्थ कौन बड़ा है। बाबा ने इसके भी उत्तर दिए हुए हैं कई जगह पर, पुरुषार्थ ही बड़ा है। वास्तव में ड्रामा केवल उसी को कहा जाएगा जो पास्ट हो गया है, जो होने वाला है, जो वर्तमान है, उसको ड्रामा कहा नहीं जाता है। ड्रामा जो हो चुका है, और एक अव्यक्तवाणी है जिसमें बाबा ने कहा है ड्रामा कहने का अधिकारी केवल वही व्यक्ति है जो आत्मअभिमानी है, श्रीमद पर है और याद में है। वही ऐसी स्थिति में ही ड्रामा शब्द का उच्चारण किया जा सकता है, बहुत पवित्र शब्द है वो, उसका कोई भी अपने सुविधाजनक श्रीमत नहीं बना सकता है। फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, अपनी श्रीमत अनुसार। इसके लिए ड्रामा जो शब्द है, ड्रामा जो है वो केवल जो हो चुका है, अब उसको बदल नहीं सकते हम। वो हो गया, अभी वो सीधा 5000 साल बाद हो गया, अभी तो नहीं होने वाला ना। कोई कहते अरे हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मतलब अभी 5000 साल बाद फिर हो गया, पर अभी थोड़ी होने वाला है। 5000 साल बहुत बड़ा टाइम है, तब होगा। तो पुरुषार्थ ही बड़ा है और बदल सकते हैं अपनी तकदीर को सब कुछ।
बाबा ने कहा है सारे सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं, प्रश्न ये है कि 9 लाख आत्माएं जो सत्युग में आएंगी वो सभी 84 जन्म लेती हैं, सारे डायनेस्टी का क्या अर्थ है?
84 जन्म कौन सी सूर्य?
बाबा ने कहा है कि सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए, प्रश्न ये है कि क्या 9 लाख आत्माएं जो सतयुग में आएंगी वो सभी 84 जन्म लेती हैं, सारे डायनेस्टी का क्या अर्थ है?
बाबा के इस बारे में बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग महावाक्य है, कोई एक महावाक्य को पकड़कर हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। बाबा ने अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें कही है, और वास्तव में अगर देखा जाए ये जो नंबरिंग है ये सारी नंबरिंग लगभग है। जैसे सतयुग 1250 वर्ष, ऐसा नहीं है कि वो केवल 1250 वर्ष का ही है, वो लगभग अभी सतयुग में 8 और उधर 12, 8 लगभग, 12 लगभग जो भी जन्म है वो ऐसा तो है नहीं कि यहां सतयुग एंड हो गया और यहां से बिल्कुल त्रेता चालू हो गया, यहां ये एंड हो गया वहां से वो चालू हो गया। उसी तरह जन्म का कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि कैलकुलेट करो जीजस क्राइस्ट के कितने जन्म हुए, गुरु नानक के कितने जन्म हुए। कई मुरलियों में कहा कि इन सब बातों में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, अपना समय वेस्ट मत करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये सब बातों में तुम्हें बिल्कुल जाना नहीं है, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जितनी आत्माएं जो फर्स्ट जनरेशन है सतयुग की, 9 लाख जो आत्मा है, और सतयुग के एंड तक 2 करोड़ लगभग, तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो सभी के सभी 84 जन्म लेंगे, बाद वाली फिर थोड़ा 81, 82, 83 कम ज्यादा।
अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपका ही, आप जो कहानियां सुनाते हैं बीच बीच में वो कहाँ मिलती है? हर कहानी का लिंक आप क्लास से जोड़ देते हैं।
हम जो भी सुनते हैं उसको ज्ञान से जोड़ देते हैं, चाहे वो कोई चुटकुला भी क्यों ना हो, जिसके लिए लोग हंसते और उसको छोड़ देते हैं और याद भी नहीं रखते, हम उसमें भी ज्ञान का क्या अर्थ होगा वो ढूंढते हैं। ये जो भी कहानी हमने सुनाई ये हमारे ज्ञान में बाबा ने कभी कोई सुनाई नहीं है बहुत सारी, परंतु ये कहीं और से हमने अगर कहीं पढ़ ली, देख ली, सुन ली, तो उसको सीधा ज्ञान में उसका क्या अर्थ हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, परंतु हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नहीं तो ज्ञान जो है वो बोरिंग हो जाता है। अभी एक अव्यक्त वाणी अगर बतानी है और उसको हम वैसे के वैसे, हम चाहे तो वैसे के वैसे वर्ड टू वर्ड बता सकते हैं, एक एक लाइन शुरुआत से लेकर तो लास्ट तक, ऐसे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, पर ऐसा बताएंगे उससे किसी का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अव्यक्त वाणी इतनी गुह्य है कि उसका एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए वो सारी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है बहुत सारी, और बाबा ने भी वही किया है। मुरलियों में देखो हर जगह उदाहरण आता है, जैसे वो, जैसे ये, जैसे ऐसा, जैसे राम, जैसे सीता, जैसे स्वयंवर, हर एक जगह उदाहरण ही है, जैसे ब्रह्मा ने ये किया, जैसे हर जगह जैसे 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 वैसे तुम करो, जैसे ये वैसे तुम करो, तो इसका कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है, जहां से भी कुछ मिल जाए